वर्षों से ही महाप्रभु जी की सेवा हो रही है। ये कौन कर रहा है? श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यदि अपना एक अलग रस है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना, जैसे रूप गोस्वामी अपना एक रस है उनका, गोपी गोपी भाव से मंजरी भाव से सेवा करते हैं, तथापि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु में पांचों रसों का वर्णन किया। पांचों रसों में वर्णन करने के बाद में मधुर रस का उसमें वर्णन विशेष रूप से नहीं दिया, अब उसको दिया उज्जवल। उसमें भी कृष्ण का और गोपियों का सब दिया, अपना भाव बहुत छिपा करके रखा उन दोनों की सेवा करने वाली नित्य सखी और प्राण सखी के रूप। भक्ति विनोद धारा जलशंख धार, भक्ति विनोद की धारा जो है ये जलशंख की धारा है। क्या धारा है भक्ति विनोद ठाकुर? रूपानुग धारा, भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से जैव धर्म चैतन्य शिक्षा मृत कृष्ण क्या है कृष्ण संहिता या क्या लिखा है वो है प्रेम प्रदीप है, भागवतार्क मर्ची माला है संकलन ग्रंथ। ऐसे ही उन्होंने 100 ग्रंथों का प्रणयन किया और उसमें भक्ति विनोद धारा उसमें बहाई। जैव धर्म को लोग वैदिक भक्ति संबंध समझते हैं कि नहीं, कंक्लूजन जो किया है वो कहां पर किया, कहां पर कंक्लूजन किया? रस विचार से किया। निर्वधि बहे तहां रोध नहीं आ, जलसंख्य धारा ये ऐसी धारा है भक्ति विनोद ठाकुर की, गौर विनोद वाणी जो कभी भी रुद्ध नहीं होती। सर्ववाद्यमयी घंटा बाजे सर्वकाल, वाद्य क्या है? घंटा। बृहत मृदंग वाद्य, बृहत मृदंग अर्थात प्रेस के द्वारा समस्त पुस्तकों को सिद्धांतों को चारों तरफ में प्रकाशित करके विश्व में महाप्रभु जी के वाणी का इन्होंने प्रचार किया, ये बृहत मृदंग। अभी ये मृदंग है नीचे से नहीं सुना जाएगा, हो सकता है थोड़ी दूर, और वो बृहत मृदंग की बोली विश्व में एक साथ में सुनेगी। उन्होंने इतने ग्रंथ प्रकाश किए प्रभुपाद जी ने, ग्रंथ ये सब प्रेस के माध्यम से, गौड़िया पत्रिका, दैनिक नदिया प्रकाश और साप्ताहिक गौड़िया, पाक्षिक गौड़िया और मासिक गौड़िया, संस्कृत का हार अंग्रेजी में हारमोनियम हारमोनिस्ट और हिंदी में भागवत इत्यादि बहुत से पत्र और पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया और सारे भारतवर्ष में खूब थोड़े दिनों में ही प्रचार किया। गुरु जी कहते थे जब प्रभुपाद की ऐसी यह है, और लोगों के बड़े बड़े शंकराचार्य के, मध्वाचार्य के, रामानुज के बड़े बड़े राजा लोग शिष्य हुए और उनके पैसे से और तलवार के बल से प्रचार किया गया, किंतु प्रभुपाद जी को ऐसा कोई भी शिष्य नहीं मिला, एक एक पैसा माथुपुरी लेने वाले इन ब्रह्मचारियों के द्वारा सारे विश्व में प्रचार किया, बिना पैसे का प्रचार किया और खूब थोड़े दिनों में। विशाल ललाट शोभे तिलक उज्ज्वल, गलत से तुलसी माला करे झलमल, अजानुलम इत्यादि ये सब। ये गुरु जी ने एक तुलसी जी की आरती लिखी। हमारे यहाँ पहले तुलसी की आरती गौड़ीय वैष्णव की नहीं थी, वो होती थी कृष्णदास बाबा जी महाराज रामानंद संप्रदाय से एक ले आए थे कहीं से, नमो रे नमोरे मैया नमो नारायणी, अब मुझे याद नहीं है बहुत, ये नहीं, नमो रे नमोरे मैया, चंद्र सखी, इनके जो कीर्तन यहाँ पर होता है ना ब्रज में, बहुत कीर्तन है चंद्र सखी का, वो दामोदर करता है खूब कीर्तन और सब कर, तो वही मैया कहते हैं, जमुना मैया, गोवर्धन बाबा, गिरिराज बाबा, ऐसे सब संबोधन करते हैं जिन्हें भक्ति का कोई भी संबंध नहीं है, नंद भी बाबा और सभी बाबा, जसोदा वो मैया, तो सब मैया, नहीं, राधा जी मैया नहीं है, वृंदा जी मैया नहीं है, जमुना जी मन नहीं है, ये सब सखियां हैं, जमुना सखी। कभी भी भूल करके मैया मत कहना, अभी सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तो भी ये समझ करके रखो। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, गुरु यही संबंध ज्ञान देता है। और यदि अभी हमको नहीं मिला तो समझोगे हमारी अभी दीक्षा नहीं हुई है, विद्वत रूढ़ि से नहीं हुई, ये अनुष्ठानी के किया गया, अभी तुम नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? तुम्हारी अयोग्यता। नहीं तो संबंध ज्ञान दीक्षा के द्वारा पुष्ट होता है, दिव्य ज्ञान होता है उसमें। जब तक संबंध ज्ञान के सहित भजन नहीं किया जाएगा नाम, तब तक कुछ भी नहीं हुआ भजन में, बस एक सुकृति होगी उस नाम से। और कोटि कोटि जन्म में करने से भी कृष्ण का प्रेम उस नाम से नहीं मिलेगा जब तक संबंध नहीं होगा। एक देखो, एक पति से स्त्री का संबंध है, पति का नाम नहीं करती, तब के अजी जरा सुनिए तो इस अजी में संबंध भरा पड़ा है कि नहीं, उस अजी में ही संबंध है। अजी जरा सुनिए तो कहेंगे लालू के पिताजी, लल्लू के पिताजी कहेंगे नहीं तो वो गुड़िया के पिताजी ऐसे कह करके, किंतु देखो संबंध है इसमें। तो इस तरह से बिना संबंध ज्ञान के भगवान ग्रहण नहीं करते भजन। कृष्ण के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है, ये गुरु दीक्षा में देते हैं। और जिसको प्राप्त नहीं हो समझो जी हमारी दीक्षा नहीं हुई, ये अनुष्ठानिक यज्ञ कर दिया और गले में वो सूता लगा दिया, बस यही हुआ। ब्राह्मण का अभिमान दे करके और भी चौपट कर दिया। उससे यदि ब्राह्मण का अभिमान नहीं होता तो एक तरह से अच्छा। अभी हम देखते हैं कि जिन लोगों को उपनयन नहीं हुआ है वो बल्कि अच्छे सरल सहज और श्रद्धालु हैं, और जिनको ये मिल गया तो न जाने किसके सिर पर पैर रख करके चलेंगे। भगवान को भी नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, शास्त्र को ही नहीं मानते, भगवान के नाम पर सब कुछ अपने हजम करते हैं और मरते हैं, नरक में जाते हैं। गृहस्थ लोग जो नहीं कर सकते हैं ये लोग कर लेते हैं। गृहस्थ आदमी कहाँ से हम लोग ले आते हैं, गृहस्थों से बड़े श्रद्धा से जाते हैं, और हम लोग यदि हड़प जाएं तो ये इसका पाप कहाँ जाएगा, इसलिए इसको समझना चाहिए। इसलिए जैसे तैसे लोगों को ये दीक्षा मंत्र भी नहीं दिया जाए, बहुत सावधानी के साथ में दिव्य ज्ञान संबंध ज्ञान दे करके तब उन लोगों को देना चाहिए। अयोग्य आदमी ये लेकर के ये कुछ समझता नहीं, आजकल इस पर विचार नहीं होता, देखते हैं कि ये दूसरी जगह न चला जाए, इसलिए जल्दी से इसको इसके कंधे पर जुआल रख दो, चलो रसोई बनाने लगे और बर्तन मांजने लगे, सब काम हो जाए, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। इन सब विषयों को नहीं बतलाएंगे जिससे कि भजन राज्य में वो अग्रसर हो। इन चीजों को ग्रहण करना चाहिए। केवल अभिमान, लाल कपड़ा का दे दिया और जनेऊ का, वो तो उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए ऐसा नहीं करके संबंध ज्ञान गुरु दे करके पुष्ट करते हैं। तो पहले ये था, और एक था और जो उन्नत अधिकार का, वो था नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तुलसी जी अब मैया नहीं रही, चंद्रशेखर मैया तेरा जस गावे, उसमें था। और इसमें क्या हुई, कृष्ण प्रेयसी। कैसी प्रेयसी? ये वृंदा जी हैं, राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, दोनों में मिलन कराती हैं, संवाद देने वाली है, इसलिए वृंदा जी को दूती भी कहते हैं। और वृंदावन की अधीश्वरी हैं, इन्होंने अपना राज्य राधा जी को अर्पण कर दिया। कृष्ण और राधा जी में गोपियों में लड़ाई होती है, ये वृंदावन किसका है, कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा है, और वो गोपियां कहती हैं ये हमारी ईश्वरी जी का है। कृष्ण ने पूछा, अरे तुम कौन है, कहाँ कुसुम सौर में कौन है तुम, आप कौन है, तो अभी तक तुम हमको नहीं पहचानते जो मैं कौन हूं, अरे बतलाओ टेढ़ी क्यों बोलती है, तो तुम बड़ी सीधी से बात कर रहे। इस तरह से प्रेम कलह लग गया। उन्होंने कहा जैसे अच्छा ये तो बतलाओ तुम जैसे तुम जो हो, तुम अपना परिचय नहीं देना चाहती, हमारा परिचय भी नहीं सुनना चाहती, तो देखो ये वन मेरा है, इसमें फूल क्यों चोरी कर रही, ओ आप इसके मालिक हो गए, कब से एक भी बिरवा लगाया यहां, एक भी पौधे में पानी कभी सींचा, जो लाखों लाखों गायों से रोज वृंदावन को उजाड़ देता है, नष्ट करता है, फूलों को पौधों को सबको बर्बाद करता है, वो तो रक्षक बन गया, भक्षक, और जो सेवा करने वाली है उनको कहा नहीं ये मालिक नहीं है। हाँ बात ठीक है, ये तुम्हारे लिए ही शोभा होती है। क्यों? इसका आपका चरित्र बहुत ही निर्मल है, बचपन से ही एक स्त्री का वध किया, बचपन में ही घर के लोग उलाहना देते हैं ये कहाँ से चोर को जन्म दिया, और जब बड़े हो गए तो मक्खन से काम उनका नहीं चला तो लोगों का वसन, लड़कियों का वसन चोरी किया। ऐसा आदमी धर्मात्मा नहीं होगा तो फिर धर्मात्मा कहाँ से जन्म लेगा? यथार्थ में आप धर्मात्मा, उससे भी नहीं बन रहा तो और भी न जाने क्या किया आपने किया। आप धर्म के ठेकेदार और वृंदावन के रक्षक, और हम जिसकी सेवा करती हैं एक एक बिरवा लगाती हैं, हमारी सहेलियाँ लगाती हैं, ये हमारा नहीं रहा आप ही का हो गया। इस तरह से प्रेम कला में ये सब बातें होती हैं। तो ये कृष्ण की प्रियसी हैं, कौन? ये वृंदा जी। ब्रजे राधा कृष्ण पद सेवा यही अभिलाष। आप राधा और कृष्ण का प्रेम दे सकती हैं, कौन? वृंदा जी। इसलिए वृंदा जी की सेवा की महिमा है, प्रतिदिन उनको प्रदीप देना, जल देना, उनकी सेवा करना, परिक्रमा करना, स्तौर और स्तुति इत्यादि। कितने कितने प्रकार की नज ने सेवा एक जगह लिखा है, नौ प्रकार की, नौ प्रकार की उनकी सेवा है। उनको लगाना, उनको पानी देना, उनकी परिक्रमा करना, उनका दर्शन करना, उनका कीर्तन करना, उनकी परिक्रमा करना, उनका विवाह भी कराना कृष्ण के साथ में, शालग्राम कृष्ण के साथ उनका विवाह भी कृष्ण के साथ में। जरा विवाह तो ना, किंतु विवाह की रंगरेलिया उससे हो सकती है, विवाह उनसे विवाह ही नहीं करेंगे कहीं से, तुमसे विवाह कौन करेगा? तुम तो विवाह करने के लिए तो तुम घूम रहा, कोई भी ब्रज की कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती नहीं तो कुंवारे रहते नंद बाबा के लड़के और आप अभी तक कुंवारे रहते राधा कृष्ण को प्रेम के देने वाली ये वृंदा देवी जी हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जे तुम्हार शरण है तार वंशा पूर्ण है, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, वृंदावन का वास देने वाली है ये वृंदा देवी। मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, विलास कुंज में हमको हमारा वास दीजिए वृंदावन में। नय ने हेरी सदा जुगल रूप राशि, यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, राधा कृष्ण सेवा दिया कर निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे मोर जेनो यही है, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जोनो भास। ये दीन कृष्ण दास कौन है? जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, अंत में कहे नाम सब। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं, शायद रघुनाथ दास गोस्वामी के या किसके ये अनुगत हैं। इनका कीर्तन बहुत ही सुंदर है, गुरु जी ने कहा ये सबका अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसा रखा जाए मैया को भी दूर कर दिया जाए, और इतनी ऊंची बातें सभी के लिए ठीक नहीं, इसलिए मध्यम आकार में कोई एक कीर्तन होना चाहिए, उसको उन्होंने किया, उसको उन्होंने किया। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो, प्रेयसी ठीक है इसको रखा, मैया नहीं बतलाया। राधा कृष्ण नित्य सेवा यही अभिलाषी, उसमें भी है इसमें भी है। ये तुम्हार शरण लय से ही कृष्ण सेवा, जो वृंदा देवी की शरण में जाएगा उसकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी और राधा और कृष्ण की सेवा पाएगी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुम्हारा चरण धरी मोरे अनुगत करी, गौर हरि सेवा मग न राखो दिवादी। आप कृपा करके कृष्ण के की सेवा में, राधा जी की सेवा में, वृंदावन की सेवा में अपराध का विचार होता, मैं अपराधी व्यक्ति तो उसको पा नहीं सकता, इसलिए गौरचंद्र की सेवा में हमें नियुक्त कीजिए, हमारा अपराध दूर हो जाए। तो गौरचंद्र की सेवा करते करते उन्हीं को राधा कृष्ण के रूप में उनकी सेवा करते। दिने रे अभिलाष मायापुरे नवद्वीपे वृंदावने दियो वास, अंगे ते माखी सदा धाम धूली राशि, धाम की धूली को राशि को हृदय में समस्त अंगों में इसको लगाऊं। नारद जी ने बर मांगा था कृष्ण की जो लीलाओं के स्थल है उन लीलाओं के साथ जाकर के स्थानों में यदि लोट पोट लगाए, वहां की चरण धूली लगाए तो वहां की कृपा मिल जाती है। जैसे हम लोग यदि जाएं नंदगांव में, उद्धव क्यारी में और टेर कदम्ब में, वहां की धूली यदि लगाए तो क्या होगा, वहां की लीलाएं सब हमारे हृदय में। भांडीर वन में गए जाए वहां लोटपोट कोई लगाए श्रद्धा पूर्वक वहां की लीलाएं हमारे हृदय में स्फुट हो। वैसे राधा कुंड में यदि जाए वहां की मुट्ठी में यदि लोटपोट तो वहां की भावनाएं आएंगी। तुम्हार आरती लागी धूप दीप पुष्प मांगी महिमा बखाने एबे हो मरे सु। आपकी आरती के लिए ये सब चीजें लाई हूं, किंतु जगत में जितने फूल हैं उन फूलों से भी श्रेष्ठ कौन फूल है? तुलसी जी का पत्ता और तुलसी जी की मंजरी। आप बिना तुलसी मंजरी के कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते। बिना तुलसी के यदि कुछ भी नहीं है घर में, दोनों तरफ में दो तुलसी कोमल कोमल और बीच में कोमल मंजरी हो, वो कृष्ण को दी जाए अर्पण करके, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाए। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य को नहीं, रघुनाथ दास स्वामी को कहा था वो पूजा करने के लिए अर्चन करने के लिए गिरिराज, बस थोड़ा सा पानी और अष्टदल मंजरी। ओ गोविंदे महारानी तुम्हार पाद पतले, तुम्हारे चरण कमलों को मैं धारण करती हूँ। देव ऋषि कुतूहल, देवता और ऋषि लोग भी, देवता लोग कौन? देवता लोग भक्त देवता लोग ये सब, और ऋषि कौन? नारद ऋषि, पराशर ऋषि, व्यास ऋषि, सुखदेव ऋषि, ये सब ऋषि, ये सब तुलसी के पत्ते में ही, तुलसी की जड़ में ही समस्त तीर्थों को वहीं पर दर्शन करते हैं। यदि तिलक नहीं मिलता है तो वहां की मिट्टी लेकर के लगा लो। ओ गोविंदे महारानी, इसलिए समस्त तीर्थ वहां पर हैं। श्री केशव अति दीन साधन भजनहीन तुम्हार अशय सदा नमा भन नंद भाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। इसी तरह से मंगलारती उन्होंने लिखा, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल रीति। आरंभ कहां से किया? मंगल निशांत लीला, मंगल उदय, इस उनके पद में निशांत लीला का सारा जितना वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गोविंद लीलामृत में और उसमें जितने भी हैं सब इसमें सूत्र रूप में और किसी न किसी रूप में ये भरे हुए हैं। जो उनको पढ़ा होगा वो सब समझेंगे। मंगल निशांत लीला, मंगल उदय, निशांत लीला जिनके हृदय में उदित हुई और समझो उसका मंगल उदित हो गया। तुम्हार निद्रा जीव निद्रित, तुम्हार निद्राय माने कृष्ण से जो जीव विमुख है, कृष्ण को भूल करके जो जीव सो रहे हैं वो निद्रा में एकदम पड़े हुए, अथवा जिनके हृदय में निशांत लीला जगी नहीं वो सब क्या है? संसार में सो रहे हैं। और निशांत लीला जिसके हृदय में जग उठी मंगलपूर्ण, वो जीव जागृत हो गए। तव जागरण विश्व जागरित है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग जगे हुए हैं, जगे हुए नहीं, सभी सो रहे हैं। क्यों? अभी निशांत लीला जी कृष्ण का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, जीव का स्वरूप कुछ भी नहीं है, अभी सो रहे हैं। जितना हम अभिमान करेंगे कृष्ण भक्ति आ गई, अभी तो विशुद्ध सत्व अथवा जो रति है वो भी नहीं आई, अभी निष्ठा और रुचि आसक्ति भी नहीं आई, अभी संसारिक कामों का महत्व हम अधिक देते हैं, इसका महत्व नहीं देते, तो अभी कहाँ से आ जाएगी? इसलिए कहते हैं मंगल आरती जागे भगवत हृदय। जिस समय ये मंगल आरती उदित हो जाएगी जीवों के हृदय में, वो जग उठेगा। आज जब तक नहीं जगी है तब तक सो रहा है। तुम्हार निद्राय जीव निद्रित धराय तव जागरण विश्व जागरण। जो उनकी सेवा करता है, उनकी मंगल आरती करता है, हृदय में जग जाती है, वो सब जीव जगे हुए हैं। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति जागुक हृदय मोरम सुमंगलारती। सुमंगलारती माने क्या? जब भक्त उन्मुख होकर के गुरु जी की सेवा करते करते दीक्षा हरिनाम लेकर संबंध ज्ञान से युक्त होकर अनर्थों से रहित, अपराधों से रहित होकर के शुद्ध रूप में कृष्ण नाम करता है तो उसके हृदय में श्रद्धा निष्ठा होती है, क्रमशः वह निष्ठा रुचि होगी, रुचि होकर के आसक्ति होगी, पहले भजन के प्रति आसक्ति और तब फिर भजनीय के प्रति आसक्ति, और उसके बाद में ये सत्व, शुद्ध सत्व रागात्मिक भक्तों के हृदय से जिसके अनुगत होकर के भजन करते हैं वह यहाँ पर आने पर एक रति हुई, यही रति पुष्ट होने पर शुद्ध रति स्थाई भाव हुआ, इस स्थाई भाव पर विभाव और अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी ये पांच के रस हैं, के द्रव्य हैं, सामग्री ये उस पर एकत्रित होते हैं तब उसको कहते हैं भक्ति रस। इस जीवन में रति तक शुद्ध सत्व तक इस जगत ई हृदय में आएगा, प्रेम और रसों का परस्पर मिलकर के रस होना ये नहीं आएगा, वो कब होगा, दूसरे जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं, क्योंकि प्रेम को ये सही नहीं सकता शरीर, मन भी नहीं सकता सकेगा, तत्क्षणात मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं होगा, दूसरे शरीर में प्रवेश करके तब ये होगा। ऐसी रति जो है मंगला रति अर्थात निशांत लीला के प्रति रति, उनकी अष्टकाली लीलाओं के प्रति रति, उनके सेवा में रति, ये सब रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये मंगलारती का दर्शन करने से और इन पदों पर विचार करने से तब हृदय में आएगी भावना। मयूर सुखादि सारी कतो पिकराज, अब उसको बतला रहे हैं मंगलारती जब जगेगी तो कैसे होगा, मयूर जो है वो के मयूरी करती है का, राधा जी के मान, राधा जी के लज्जा, लज्जा जी का उनका धैर्य इत्यादि को पर्वत है, इसको चूर्ण विचूर्ण करने वाला कौन है, मयूर कहता है जो एक कृष्ण के बिना कोई नहीं, अब मयूरी क्या कहती है, प्रमत्त गजराज हैं कृष्ण, उनको अपनी श्रृंखलाओं से रूपी अंकुश से बांध करके कौन उनको वशीभूत कर सकता है, एकमात्र श्रीमती राधिका जी के कौन पुरुष के लिए और कृष्ण के लिए, और का स्त्रीलिंग ये श्रीमती राधिका, ये दोनों कृष्ण को जगाने की निशांत लीला में चेष्टा करते हैं, अब रात बीत गई अब आप जागृत होइए, आप तो प्रभु हैं, आप स्वामिनी हैं, आपको कौन शिक्षा देगा, किंतु नहीं इस समय मुझको शिक्षा देना पड़ रहा, आप जल्दी से उठिए, ये दोनों कर रहे हैं। और सारी का तो आप लोग जानते ही हैं, ये सारी और ये द्वंद करके उनकी निद्रा से उनको जगाते हैं, कौन जगाता है, ये दोनों किसके माध्यम से, वृंदा देवी के आदेश से, ये जल्दी से अब उठ करके घर में जाएं। सुमधुर ध्वनि करे जतो साखीगण, साखीगण माने वृक्ष के जितने वृक्ष पर रहने वाले, शाखाओं पर विचरण करने वाले सूप स्वारी, मैना, तोता, पपीहा इत्यादि सब, जल के भी कारंडव इत्यादि ये सब हैं, उनको जगाने की चेष्टा करते हैं, और साखी माने सखी को ले लिया जाता है, इसका अर्थ बदल जाएगा, मंगल श्रवण बाजे मधुर कूजन, पशुओं पक्षियों का कूजन, अभी जाएंगे टहलने के लिए सवेरे ना 5 बजे चहचहा जाते हैं पक्षी सब, लाखों एक साथ में सूख पक्षी पीक मयूर सब बोलने लगते हैं यहीं पर, तो वृंदावन की तो बात ही क्या, एक साथ इसको कहते हैं पूजन। कुसुमित सरोवर कमल हल्लो, वृंदावन में कभी कमल, कभी कुसुम सरोवर, कभी पावन सरोवर, कभी मानसी गंगा में, कभी यमुना में भी कमल खिले हुए हैं, इनके स्नान इत्यादि करने से जब पानी हिलने लगता है तो वो कमल भी हिलने लगते हैं, पवन कमल हिल्लो मंगल सौरभ बहे पवन कलो, झाजर कासर घंटा शंख करताल, मंगल मृदंग बाजे परम रसाल, मंगल आरती करे भकते रगन, अभागा के सब करे नाम संकीर्तन। श्री ये अभागा कहा किस लिए, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने को पुरुषेरे कीट हैते मुहिषेड़ा घष्ट इत्यादि कहते हैं। सनातन गोस्वामी अपने को मुसलमान समझते हैं। ये भक्तों की ऐसी ही नीति होती है, दीनहीन होते हैं, इसीलिए इन्होंने हम लोग उसके बदले में कर देते हैं श्री केशव दास अति
नाम से।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त। आज यहीं तक रहे, आ जाओ कीर्तन करने के लिए। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवाम त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणान्तिके भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमन्दै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोचि साङ्विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदर ईश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमान यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमात्यन्ततो दूत्यगोप्य। कल हम लोगों ने साधारण रूप में इसका अनुवाद हम लोगों ने किया। अब सत्यव्रत मुनि दास भक्ति से आरंभ करते हुए अपने इष्ट देव का नमन करते हैं। कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप है। तभी लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान गोकुल में अत्यंत मनोहर रूप से सुशोभित हो रहे हैं, कुंडल झलक रहे हैं। यशोदा मैया के भय से ओखल से कूद कर भागे और यशोदा मैया ने उनसे भी अधिक तीव्र गति से दौड़कर और उनके पीछे से पकड़ लिया। इसके पृष्ठभूमि में श्रीमद् भागवत की एक कथा है जिसमें दीपावली का दिन था। उस दिन स्वयं यशोदा जी ने दूध निकाला, पद्मगंधा और कालिंदी इत्यादि गायों का, जो कि अधिक चरने के लिए बहुत दूर नहीं जाती थी, काफी दूध देने वाली थी, अपने हाथों से निकाला, अपने हाथों से औंट आया, अपने हाथों से ही उसमें क्या देते हैं, हाँ जाम देते हैं। और दूसरे दिन सवेरे में दधि मंथन करने के लिए स्वयं बैठी। इसमें भी एक पीछे कहानी है, कथा है। क्यों? जिनके घर में हजारों लाखों दासियां हैं, रोहिणी मैया हैं और हजारों गोपियां हैं, आज वो खुद दूध मंथन करने के लिए बैठी। क्यों? कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं, पहले घर में आबद्ध रहते थे, अब घुटनों पर चलने लगे हैं और ऐसी दुरंत लीलाएं करते हैं जो यशोदा मैया मुख में अंगुल दे करके काटने लगती हैं आश्चर्य से। कभी कोई सर्प बैठा है उसको पकड़ लेते, कभी बड़े बड़े भैंसे सिंह वाले और उनकी सिंह पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाते, कभी बड़े बड़े सांड उनकी भी सिंह पकड़ लेते, मुख पकड़ लेते। एक समय बलदेव जी के साथ में खेलते खेलते घर से निकल आए, यशोदा मैया बड़ी तंग आ गई। दिन रात जब छोटा था तब तो इतनी चौकसी नहीं करनी पड़ती थी, अब चौकसी करनी पड़ रही, कभी तलवार पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है। अभी कल ही बलदेव जी के साथ में खेलते खेलते किसी प्रकार से वो देहली को पार कर गया। जैसा मैंने देखनी कहाँ गया दोनों, तो करके देखी क्या, ये दोनों बबल के कांट या पेड़ के कांट सब रखे गए हैं घेरावंदा के लिए, उसके अंदर में कोई एक फूल खिला था, फूल देख करके ये लुप्त हो गया, अब उसको तोड़ना ही चाहिए। इसलिए बड़ी मुश्किल से कांटों को हटा करके ये दोनों किसी प्रकार से उसके भीतर में घुस गए। जब घुस गए फूल को लिया, इतने में जो कांटा को ऊपर उठाया था वो नीचे, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, कांटे भी चुभने लगे। अब तो वहीं से जोर करके मैया मैया दोनों चिल्लाए। यशोदा जी खोजते खोजते देखा, अरे ये तो कांटे में फंसे हुए, क्रोध भी आया और कहा जी ये देखो तो सन्न रह गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को बुला करके कांटे को हटा करके किसी प्रकार से उनको बचाया। अब एक दिन जन्म दिवस था, उसी समय में यशोदा मैया ने कहा जरा बछड़ा हुआ है ना उसको ले आ, तो बछड़े के लेने के लिए गया, बछड़ा आ नहीं रहा, उसको गले से पकड़ लिया है और बछड़ा भी कैसा बड़ा सुंदर, अभी बलिष्ठ, अभी थोड़े दिन का है बछड़ा, अभी फुदकने वाला सफेद बछड़ा पकड़ लिया और खींच रहे हैं, वो चारों टांग आगे लगा दिया, वो जाएगा नहीं और ये उसको पकड़ करके खींच रहे हैं। खींचते धींगा मस्ती करते करते किसी प्रकार से दहली तक ले आए। घर के अंदर में जो ही घुसा देखा जैसे मक्खन की हंडिया लटक रही है, अब बछड़े को भी नहीं छोड़ सकते और इधर हंडिया लटकी हुई, कुछ मुख से पानी आ गया और सोचा जैसे अब कैसे इसको लिया जाए, तो बछड़े को वहीं पर खड़ा कर दिया, ओखल तो थी नहीं वहाँ, उसी के ऊपर में सोचा जी इसके ऊपर में देख करके और उसको पकड़, तो ज्यों ही उसके ऊपर में थोड़ा सा हाथ दिया, इतने में ऊपर में तो वो पकड़ करके किसी प्रकार से झूल गए और इतने में बछड़ा वहाँ से भाग गया। अब झूल करके मैया मैया चिल्लाने लगे, इतने में मैया आई, कहे अभी हम आज तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम देखें जी कब तक लटकता है, रोज लटकता है वैसे लटकने। अब वो देख करके और चिल्लाने लगे, कुछ देर में गाल में एक चपत लगाया और फिर उसको पकड़ करके नीचे उतारा। अब थोड़े दिनों के बाद में घरों में घुस करके मक्खन इत्यादि चोरी करने लगे, किसी के घर में घुस जाते उसके बच्चों के साथ में और घुस करके उसी के बेटे को कहते तुम जा करके भीतर से पीछे की कबाड़ खोल दो, और पीछे से उसके ही उसी के लड़के से किवाड़ खुलवा करके भीतर में घुस जाते, कह देते जे तुम उसका बछड़ा खोल दो, बस अपना बछड़ा वो खुल खोल देता मैया से जा करके, कहते मैया बछड़ा दूध पी रहा है, मैया उधर में जाती इधर में घर में घुस गए, दधी मक्खन जो खाया बंदरों को लुटाया। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। एक दिन किसी गोपी ने उनको पकड़ लिए, पकड़ कर यही पकड़ी कहा, अरे मैया ये तेरा घर, ये तो मैंने अपना घर समझ करके इसमें घुसा था। गोपियाँ हंसने लगी, हाथ से छू करके चले गए। एक दिन किसी गोपी ने पकड़ लिया, रंगे हाथ उसमें मक्खन में हाथ दिया और इतने में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मैया छोड़ दे मुझे, मैया छोड़ दे करने लगे, आज छोड़ेंगी नहीं, किस लिए हाथ लगाया? तो मैंने तो मक्खन नहीं लिया, तो कैसे हाथ लगाया? तो हाथ इसलिए लगाया, हमारा बछड़ा इसमें गिर गया है। बछड़ा इसमें कैसे गिरेगा? तो मार्बल का उसमें हाथ निकाल करके बाबा ने हमको खेलने के लिए दिया था, ये उछल करके उसी में कूद गया, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारा मक्खन थोड़े खा रहा। नाना प्रकार की इसी प्रकार से लीलाएं करते हैं। गोपियां भी इसी प्रकार से उनको प्रतिदिन चाहती जी हमारे घर में आए। सोचा जी यशोदा जी का ये सौभाग्य नहीं है क्रीड़ा देखने का, छल बल का से उनको ये कथाएं सुनाएं। इसलिए यशोदा जी के पास में जाकर के उलाहने के बहाने उनसे कहने लगी, तेरा लेरा बड़ा ढीठा हो गया है, अभी से चोरी करता है, हम लोगों के घरों में धस जाता है और वहाँ से मक्खन इत्यादि चोरी करता है, इनको विश्वास नहीं होता। कभी हमारा लाला तभी सो रहा है, अभी तो उठा ही नहीं, चोरी कैसे किया? एक दिन तो सवेरे के समय में भोर में सखाओं को लेकर के और किसी के घर में घुस गए। वहाँ पर एक गोपी ने उनको पकड़ लिया और कहा यशोदा का विश्वास नहीं हुआ था, चलो लेकर के दिखाएं। यशोदा जी को पकड़ करके उस बच्चे को और लेकर के चले आए। यशोदा जी से कहे देखो अपने लाला की करतूत, सवेरे में जाता है तुम विश्वास नहीं करते। अरे कहाँ है मेरा लाला, मेरा लाला तो वहाँ पर सो रहा है। तो देखो तो ये इसको, तो जैसे मुँह का ये उठाया कपड़ा तो हमें देखा जैसे उसी का लड़का है जिसको पकड़ करके आई। तरह तरह की लीलाएँ करते। यशोदा मैया भी तंग आ गई और उन्होंने सोचा हमारे घर का मक्खन खट्टा होता है क्योंकि दासियाँ बनाती हैं, इसलिए आज मैं खुद ही दूध दूँगी, एक खुद ही मक्खन बनाऊंगी और तब कृष्ण को खिलाऊंगी, नहीं तो ये मीठा होने के बदले उन लोगों के घरों में खाता है। इस तरह से आज यशोदा मैया बैठ रही हैं। कैसी सुंदरी हैं यशोदा जी, प्रौढ़ होने पर, अभी प्रौढ़ा हैं, प्रौढ़ा मैंने 40-50 वर्ष की हो गई हैं और अभी कोई बच्चा नहीं था, यही पहला बच्चा हुआ। सुंदरता की खान है, जिनके कृष्ण ही इतने सुंदर हैं उसकी मैया कितनी सुंदरी होगी, श्यामल वर्ण की, कोई कोई कहते हैं गौर वर्ण की, किंतु श्यामल वर्ण की ही रूप गोस्वामी ने लिखा। सुंदर रेशमी का पतला सूक्ष्म वसन उनके शरीर पर है, मानो उनके सब अंग का सौंदर्य उस पतले कपड़े से सूक्ष्म वस्त्र से झांक रहा हो। दधि मंथन कर रही हैं और उसके परिश्रम से अंचल गिर गया, कपड़े भी हट गए और खूब जोर से घर घर कर रही। एक किसी खंभे में लगा दिया और उसकी रस्सी, हाथ से नहीं रस्सी, आप लोग जब जाएंगे नंदगांव में तो देखेंगे जो कितनी बड़ी हड़िया है, उसमें हम समझते हैं कि 10 मन 20 मन भी दूध उसमें दही आ जाएगा, दिखलाएंगे हम लोग। पीछे जो बज रहा है ये घर्षण से, ये मानो मृदंग का ताल हो और उनकी सोने की चूड़ियां परस्पर लग करके झनझन जो कर रही है, मानो ये सुंदर मधुर वाला करताल है। और उनका स्वर क्या, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, उदुःखलेशं
तंडुलानं संघंटयंतो मुसलै प्रमुग्धा गायंति गोप्य जनिता अनुरागा गोविंद दामो।
इस तरह से कृष्ण लीला का गायन कर रही है, तन्मय हो रही। इतना सुंदर स्वर और ये सब जो मृदंग और करताल बज रहे हैं, तन्मय होकर के गा रही है। कृष्ण वहां से उठे भोर में, 4 बजे भोर की बात, भूखे हैं, मैया को खोजा नहीं मिली, पेट के बल से वहां से उतरे और उतर करके यशोदा मैया के यहाँ चले आ रहे हैं और क्रमशः उनके रोने का स्वर बढ़ता चला जा रहा है। निकट में आए, खूब जोर से रोया तो भी नहीं, यशोदा मैया को नहीं सुनाई पड़ा। निकट में आकर के उनकी दधि मंथनी को पकड़ लिया और एक हाथ से उनके शीर के केस को पकड़ लिया। यशोदा माई का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा, घूम करके देखा, ये तो कन्हैया गोपाल, वात्सल्य रस से उनका हृदय उमड़ पड़ा। यहां पर कृष्ण विषय हैं प्रेम के, आश्रय हैं यशोदा मैया, संबंध क्या है बेटे का, वात्सल्य भाव। कृष्ण में यह वात्सल्य भाव नहीं, यह वात्सल्य भाव किस में है, आश्रय यशोदा में, और कृष्ण उसके विषय विग्रह हैं। हाँ, कृष्ण में कभी कभी वात्सल्य भाव आता है, द्वारका में कभी भी अपने भक्तों पर भी भक्त वात्सल्य आता है, किंतु ऐसा वात्सल्य ब्रजवाला जो वात्सल्य है यशोदा मैया में, नंद बाबा में, वो कभी उनको नहीं आता, थोड़ा सा अंश कभी कभी उनमें प्रकाश होता है। स्थाई भाव यहाँ पर वात्सल्य भाव, इसके ऊपर में विभाव। विभाव माने ये साधक है कौन, यशोदा जी को समझो, जो उनका अनुगमन करके रागानुगा भजन में प्रवेश करना चाहता है। साधक यशोदा जी के भावों का अधिक चिंतन करेगा, कृष्ण का भाव उतना नहीं, अधिक तरफ में इन्हीं के भाव में डूब करके उनकी सेवा करने की चेष्टा करेगा। यशोदा मैया के अंदर में वात्सल्य भाव है, ये स्थाई भाव है। स्थाई भाव होने पर भी उसमें तरंगे नहीं आएंगी, तरंगे कब आएंगी, जब उनमें 4 प्रकार के रस की जो सामग्रियां हैं उसमें मिलित होगी। विभाव, विभाव माने आलिम, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन 2 प्रकार का, आश्रय और विषय। कृष्ण है बेटे, यशोदा है मैया। बेटे को देखा, कैसा देखा, नंग धड़ंग छोटा सा बच्चा रो रहा है दूध के लिए, स्तनपान करने के लिए मचल रहा है और लटें अभी सोकर के आया है ना, कैसे होएगी, इधर उधर बिखरी है, मानो भौरे उस पर गुंजार कर रहे हैं। साथ साथ में कुंडल, जब लंबा लंबा रोता है तो ये कुंडल दलक रहा है, और क्या रो रहा है दूध के लिए, ये हो गया उद्दीपन। और ये उनका मुखारविंद देख करके मुग्ध हो गई, हृदय द्रवित हो गया। तो ये भाव, स्थाई भाव में विभाव, इसके बाद में उद्दीपन। उद्दीपन हुआ क्या, कृष्ण का मुखारविंद, उनके लटें जो आ रही हैं, कुंडल दलक रहे हैं, नंगा धड़ंगा भूखा है, ये सब उद्दीपन हुए। उद्दीपन के बाद में अनुभव देख करके चित्त में, उनके हृदय में लहरें आने लगी। क्या लहरें आने लगी, आंखों में आंसू आ गए प्रेम के, रोमांच हो गया, कंप, अश्रु, पुलक, ये सब जो है अनुभव। अनुभव में भी एक अष्टसात्विक भाव विशेष होता है, ये अनुभव के अंदर है। ये 8 प्रधान हैं, किंतु और भी बहुत से भाव अनुभव हैं, चित्त के हृदयों का जो अवबोधक भाव होते हैं बतलाने वाले, वे अष्टसात्विक भाव हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से भाव, और एक व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी मैंने संचारी, भी विशेष रूप से स्थाई भाव के ओर जाने वाले, तरंगों के साथ में स्थाई भाव को उठाने वाले, तरंगायित करने वाले, इनको कहते हैं संचारी भाव, ने? संचरण करने वाले। कहाँ? स्थाई भाव रूपी समुद्र में। किस रूप में? लहरों के रूप में, और फिर उसी में मिल जाते हैं। उसको स्थाई भाव वाली जसोदा है, उनके भावों में, हृदय में उमंग बढ़ा करके और कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र में उनको तरंगायित कर, कभी डुबाती हैं कभी ये करती हैं। इस तरह से अनुभव और ये तो हो गया अनुभव विभाव इत्यादि। इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में ले लिया और हाथों से उनके केशों को उलझे हुए को सुलझाने लग गई, और आंख से आंसू के बूंदे भी आने लगी, और स्तन से इतना दूध निकला, अपने आप कृष्ण को चूसना नहीं पड़ रहा, अपने आप निकलने लगा। इतने में यशोदा मैया ने देखा, जब कृष्ण तो परित्यक्त नहीं हुआ, पासी में एक चूल्ही पर रखा था दूध, वो उफन रहा है, मानो दूध ये कह रहा है, मैया मुझे तो दूध, मैं मुझे सेवा करने का समय नहीं मिलेगा, तुम्हारे स्तन में इतना दूध है, समुद्र का पानी सूख सकता है, खत्म हो सकता है, तुम्हारे स्तन का दूध नहीं खत्म होगा, और कृष्ण का उदर इतना बड़ा है जो विश्व ब्रह्मांड में समा सकता है, किंतु ये भरेगा नहीं, तो कृष्ण का पेट भरेगा नहीं, तुम्हारा दूध समाप्त नहीं होगा, इसलिए इनका पीना भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, इसलिए आग में जल मरना ही अच्छा। साधकों के लिए ऐसा ही होना चाहिए, यदि कृष्ण की गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं है तो की काज, हाँ केनो अच्छा ये प्राण, उस प्राण से कोई मतलब नहीं। जब साधक के हृदय में ऐसे भाव आएंगे तो सचमुच